अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा कौन है पति। तामांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हस्ती आंखों वाली तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तामांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी, इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का टिंग सिल आचू आब्यों तथा च्यूबो लियोबा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनके जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तामांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शॉल पर चांद सूरज और तारे सफेद सुनहरे लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया था। विश्वास ही नहीं होता था कि ये बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तो तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में भी चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि तीन देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया कि उसका विवाह तो हो चुका है। पिता ने कहा कि वो ऐसे विवाह को नहीं मानता, ना ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वो उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तामांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबूतानी और तामांग परेशान हो गए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबूतानी को नृत्य करना था, उसने वहाँ तालों यानी पीतल की तश्तरियाँ मिट्टी के नीचे दबाकर रख दी। नृत्य आरंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों ने नृत्य शुरू किया। तीनों देव पुरुषों ने अनेक बार उछल कूद करने पर भी शर्त सुनकर आबूतानी और तामांग परेशान हो गए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबूतानी को नृत्य करना था, उसने वहां तालों यानी पीतल की तश्तरियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य शुरू किया, हर पद न्यास के बाद टन टन की आवाज ने तार दिया। आबूतानी जीत गया, पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई। तीर कमान से टंगलो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर वही टंगलो पर लगा रहे। इस पर भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा। उसका तीर टनलों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा पर निशाना चूक गया। वो टनलों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टनलों पर सही मारा। टन की आवाज भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा। वो सीधा टनलों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। ये शर्त भी आबूतानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वो आबूतानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति, तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले। तीनों देव पुरुष बोले, ये तो बेईमानी है। हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो, तमांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में ये आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों तथा मिट्टी के कुलड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुलड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुषों ने कुलड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरी जोर से मिट्टी का कुलड़ा दूर फेंका जो तीनों के कुलड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुलड़े तक पहुंची। जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुलड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार की। कल सुबह इसी जगह तमांग के विवाह में आबूतानी से रचाऊंगा, सब लोग निमंत्रित हैं, तमांग के पिता ने ऐलान किया। सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान रह गई। आबूतानी के रूप में चार जन खड़े थे। ये भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मीची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो इतना पगला गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर हाथ और आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। तब वो चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वो निश्चिंत हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। संकलनकर्ता सुरेखा पाड़ंदीकर।